लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं, ताकि हम में से प्रत्येक को प्रभु यीशु और उनके पवित्रतम हृदय के साथ व्यक्तिगत संबंध द्वारा सांत्वना मिले, जिससे हम विश्व के सब लोगों के प्रति करुणावान बनना सीखें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम अपने कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत पवित्र हृदय पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस, अर्थात उसने हमें प्रेम किया है की चर्चा सुन रहे हैं। दिल एक्सित नोस के चौथे अध्याय का शीर्षक है एक प्रेम जो हमें अपने को पेय स्वरूप देता है। हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि क्रूस में यीशु अपने को सारे पापों के लिए अर्पित करते हैं, उन्हें भी जिन्हें हमने अब तक नहीं किया है। उसी भांति हम उन्हें सांत्वना देने के लिए जो कार्य करते हैं, समय के पारे जाते हुए उनके घायल हृदय का स्पर्श करता है। अब जब मसीह पहले से ही स्वर्ग में राज करते हैं, तो यह क्षतिपूर्ति के कार्य कैसे सांत्वना दे सकते हैं? इस सवाल का उत्तर हम संत अगस्टिन के शब्दों में दे सकते हैं, मुझे एक प्रेम करने वाले को दो और वह समझेगा कि मैं क्या कहता हूँ। कोई भी जो ईश्वर के प्रति महान प्रेम से भरा है और जो अतीत को मुड़कर देखता है, वह ख्रिस्त के चिंतन पर निवास करता है और उन्हें मानव के लिए कार्य करते, दुख उठाते, कठिनाइयों का सामना करते हुए देखता है। वे मनुष्यों और उनकी मुक्ति के लिए ऐसा करते हैं, पीड़ा से दबे और वेदना से लगभग थके हुए, बल्कि हमारे पापों के कारण कुचले हुए, और वे उन्हीं घावों के द्वारा हमें चंगाई प्रदान करते हैं। जितना अधिक विश्वासी इन सब बातों पर विचार करते हैं, उतना ही अधिक स्पष्ट रूप से मानव जाति के पापों को पाते हैं, जब कभी वे किए गए थे। यही वे कारण थे जिसके कारण मसीह को मृत्यु के हवाले किया गया। श्रोताओ, धर्म ग्रंथ जब हमें यह कहता है कि विश्वासी जो अपने विश्वास के अनुसार जीवन यापन करने में सफल नहीं होते, वे ईश्वर के पुत्र को पुनः क्रूसित करते हैं, या जब संत पौलुस अपने दुखों को दूसरों के नाम पर अर्पित करते हैं, तो वे हमें कहते हैं, मेरे शरीर में मैं उन वेदनाओं को पूरा कर रहा हूँ जो बाकी रह गई हैं, या पुनः यीशु अपने दुख भोग में सिर्फ अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, बल्कि उनके लिए भी जो अपने शब्दों के द्वारा मुझ में विश्वास करते हैं। ये सभी कथन हमारी सामान्य सोच को चुनौती देते हैं। यह हमें यह दिखलाती है कि अतीत को वर्तमान से पूरी तरह अलग करना संभव नहीं है। यद्यपि इनके जटिल होने पर भी हमारा मन इसे समझने की कोशिश करता है। सुसमाचार अपनी समृद्धि में सिर्फ हमारे मनन ध्यान के लिए नहीं लिखा गया है, लेकिन इसकी वास्तविकता को अपने प्रेमपूर्ण कार्यों और अपने आंतरिक जीवन को अनुभव करने हेतु हम इसे निश्चित रूप में यीशु ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्य से संबंधित पाते हैं। हमारा मन जो विश्वास के इस अनुभव की पूर्णता को ग्रहण करने में असमर्थ प्रतीत होता है, जो मसीह के साथ उनकी पीड़ा में हमारी एकता तथा उनके जी उठने, उनके साथ मिलने वाली शक्ति, सांत्वना और मित्रता का आधार है, हम उनके पुनर्जीवित जीवन में आनंदित होते हैं। श्रोताओं, हम इन दो अभिभाज्य और परस्पर समृद्ध पहलुओं में पास्का रहस्य की एकता को देखते हैं, एक रहस्य जो कृपाओं में दो आयामों को प्रस्तुत करता है। इस बात को सुनिश्चित करता है कि जब कभी हम अपने जीवन के दुखों को ख्रिस्त की सांत्वना हेतु समर्पित करते हैं, वह दुख हमारे लिए पास्का के प्रेममय ज्योति में प्रकाशित और परिवर्तित हो जाता है। हम इस रहस्य को स्वयं अपने जीवन में साझा करते हैं, क्योंकि ख्रिस्त ने स्वयं अपने में उस जीवन को साझा करने का चुनाव किया। उन्होंने सर्वप्रथम इसका अनुभव करने की चाह रखी। एक प्रधान स्वरूप जिसे वह अपने शरीर कलिसिया में अनुभव करे, दोनों हमारे घाव और हमारी सांत्वनाएं। जब हम ईश्वर के अनुग्रह में जीवन यापन करते हैं, यह पारस्परिक साझा करना हमारे लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। एक शब्द में, पुनर्जीवित यीशु अपने कृपा की क्रियाशीलता में रहस्यात्मक रूप में हमें अपने दुख भोग से संयुक्त करते हैं। विश्वासियों का हृदय जो पुनरुत्थान की खुशी का अनुभव करते हैं, हम इस तथ्य को समझें कि वे स्वयं अपने में ख्रिस्त के दुख भोग में अपने को सम्मिलित करने की चाह रखते हैं। वे अपने जीवन के दुखों को, संघर्षों, निराशाओं और उन भयों को जो उनके जीवन के अंग हैं, उन्हें अर्पित करते हुए अपने को उनके दुख भोग में शामिल करने की चाह रखते हैं। वे इसका अनुभव व्यक्तिगत रूप में अकेलेपन में नहीं करते हैं, चूंकि उनके दुख तकलीफों में हम यीशु के रहस्यात्मक शरीर में पवित्र तीर्थयात्री ईश प्रजा को अंग स्वरूप पाते हैं, जो ख्रिस्त के दुख भोग को हर समय और हर क्षण अपने में साझा करते हैं। अतः सांत्वना की भक्ति किसी भी तरह से अनैतिहासिक या अमूर्त नहीं है। यह इतिहास के माध्यम से कलिसिया की तीर्थ यात्रा में शरीर और रक्त बन जाती है। श्रोताओं, स्वाभाविक रूप में यीशु को सांत्वना देने की चाह, जिसकी शुरुआत हमारे दुख से होती है, जहां हम इस बात पर चिंतन करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए किन चीजों को सहा, हमारी बुरी आदतें, मजबूरियां, आसक्ति, कमजोर विश्वास, व्यर्थ लक्ष्य और हमारे वास्तविक पापों के साथ हमारे हृदयों में ईश्वर के प्रेम का प्रत्युत्तर देने में असफलता और हमारे जीवन में उनकी योजना को हम ईमानदारी से स्वीकारना शुरू करते हैं। यह अनुभूति हमें शुद्ध करती है, क्योंकि प्रेम में हम आंसुओं द्वारा शुद्धिकरण को पाते हैं, जिसके अंत में हम अपने को ईश्वर के प्रति अधिक आकर्षित होता पाते, तो वहीं हम स्वयं के बारे में कम आसक्ति को पाते हैं। श्रोताओं, इस भांति हम अपने में ईश्वर को गहरी सांत्वना प्रदान करने की चाह को पाते हैं, जो हमारी ओर से उनके लिए गहरी संवेदना को व्यक्त करती है। हमारी संवेदना अपने में एक खेद की अनुभूति नहीं है, जो हमें निराश करती या अपने को अयोग्य होने से ग्रसित करती है, लेकिन यह हमारे लिए एक भला बेधित होना है, जो हमारे हृदयों को शुद्ध और चंगाई प्रदान करती है। एक बार जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, हमारा हृदय पवित्र आत्मा के कार्यों के लिए खुल जाता है। जीवन जल का उद्गम जो हमारे अंदर उमड़ पड़ता, जो हमारे आंखों में आंसू लाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि रोना हमारे लिए स्वयं पर तरस खाना है, जैसे कि हम बहुत बार इसके प्रलोभन में पड़ जाते हैं। संवेदना में आंसू बहाने का अर्थ है सच्चे रूप में दुख सहते हुए ईश्वर से अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना। यह इस बात को पहचानना है कि हम ईश्वर के प्रति सदैव ऋणी हैं। यह उस भांति है मानो पानी की बूंदें एक पत्थर को तोड़ देती हैं। वह हितकारी दुख जो हमारे लिए अति शांतिदायक होती है। संवेदना अतः हमारा कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक कृपा है और हमें इसके लिए प्रार्थना में विनय करने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है दुखित यीशु के संग दुख में चलने की कृपा, वेदना में पड़े यीशु के संग वेदना, आंसू और एक गहरे दुख में अपने लिए गहरे दुख की अनुभूति, क्योंकि ख्रिस्त ने मेरे खातिर दुख सहा है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस अर्थात उसने हमें प्रेम किया की एक चर्चा सुने। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
प्रभु प्यार की सुली से मुझको बुलाता है, बाइबल के वचनों से यीशु बुलाता है। प्रभु प्यार की सुली से मुझको बुलाता है। को किसने है मिटाया, यीशु आज भी जिंदा है। सूली को किसने है मिटाया, सूली आज भी जिंदा है। पुरोहितों के वचनों से यीशु बुलाता है। प्रभु प्यार की सुली से मुझको बुलाता है।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने इटली के धर्माध्यक्षों से मुलाकात करते हुए उन्हें विश्वास की घोषणा एवं प्रसार की अपनी मुख्य जिम्मेदारी को स्वीकार करने, हमेशा ख्रिस्त को आगे रखने और अपने मूल आधार पर लौट आने का आग्रह किया, साथ ही शांति स्थापित करने और एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। मंगलवार की सुबह वैटिकन के आशीर्वाद हॉल में इतालवी काथिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन या चेई को संबोधित करते हुए पोप ने अपनी टिप्पणी में एकता, साक्ष्य एवं सबसे बढ़कर प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने में लोगों की मदद करने का आह्वान किया, जो दिवंगत पोप फ्रांसिस के प्रेरित प्रबोधन एवंजेली गाउडियम द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करता है, ताकि वे सुसमाचार के आनंद की खोज कर सके। उन्होंने कहा, इसका मतलब है यीशु ख्रिस्त को केंद्र में रखना और एवंजेली गौतम द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए लोगों को उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने में मदद करना। यह कहते हुए कि हम अत्यधिक विभाजन के दौर में जी रहे हैं, संत पापा ने हमारे विश्वास की नींव केरिग्मा पर लौट आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, यह पहली महान प्रतिबद्धता है जो सभी को प्रेरित करती है। प्रेरितिक मिशन, हमने जो देखा और सुना है हम उससे आपके लिए घोषित करते हैं, को नवीनीकृत करने और साझा करके मानवता की रगों में मसीह को लाना है। पोप ने कहा कि यह सभी तक सुसमाचार पहुंचाने के तरीके को समझना है, जिसमें प्रेरित कार्य उन लोगों तक पहुंचने में सक्षम है जो सबसे दूर हैं, और धर्म शिक्षा एवं घोषणा की भाषा को नवीनीकृत करने के लिए उपयुक्त उपकरण है। पोप ने उन्हें कलीसिया बनने के लिए कहा जो सुसमाचार का प्रतीक है, और सुसमाचार शांति, मानवीय गरिमा और संवाद की घोषणा करते हुए ईश्वर के राज्य का चिन्ह है। संत पापा ने जोर देते हुए कहा कि ख्रिस्त के साथ संबंध हमें शांति पर प्रेरित ध्यान विकसित करने का आह्वान करता है। उन्होंने याद दिलाया कि प्रभु हमें दुनिया में अपना वरदान ले जाने के लिए भेजते हैं, तुम्हें शांति मिले, और दैनिक जीवन के स्थानों में इसके निर्माता बनने के लिए बुलाते हैं। पोप लियो ने अपनी आशा व्यक्त की कि इटली में कलीसियाओं की यात्रा में यीशु को केंद्र में रखकर सुसंगत सहजीवन में प्रेरितिक आत्मपरक के एक आवश्यक साधन के रूप में एक मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण शामिल होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मानव जाति पर एक जीवन चिंतन के बिना उसकी भौतिकता, वैधता, अनंत की प्यास और संबंध बनाए रखने की क्षमता में नैतिकता एक कोट में सिमट कर रह जाती है और विश्वास के विघटित होने का खतरा होता है। भविष्य की ओर शांति से देखने और साहसी विकल्पों से न डरने का आग्रह करते हुए पोप ने कहा, कोई भी आप लोगों के करीब होने से, जीवन साझा करने से, कमजोर लोगों के साथ चलने से, गरीबों की सेवा करने से नहीं रोक सकता। पोप ने धर्माध्यक्षों से यह भी आग्रह किया कि वे इस बात पर ध्यान दें कि लोग धर्मी ईश्वर के वचन से पोषित एवं कलीसिया के सामाजिक सिद्धांतों को अपनाते हुए अपने कार्यस्थलों, स्कूलों, अस्पतालों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थलों, अर्थव्यवस्था एवं राजनीति में सुसमाचार प्रचार के नायक बन सकें। अपना प्रेरितिक आशीर्वाद देने से पहले पोप लियो चौदहवें ने इतालवी धर्माध्यक्षों को लोरेटो, पोम्पे एवं पूरी इटली में फैले अनगिनत तीर्थ स्थलों की माता मरियम को सौंप दिया। वैटिकन ने जुलाई एवं अगस्त में पोप लियो चौदहवें के कार्यक्रमों की सूची जारी की, जिसके अनुसार रविवार 6 जुलाई को संत पापा लियो चौदहवें अवकाश हेतु कस्टेल गंदोल्पो के परमधम पीठे निवास जाएंगे। 13 जुलाई को सुबह 10 बजे कस्टेल गंदोल्पो में परमधम पीठ के संत तोमासो दा विला नोवा के पल्ली में वे पौत्र मिस्सा का अनुष्ठान करेंगे और मध्याह्न 12 बजे वे प्रेरितिक पैलेस के सामने आजादी प्रांगण में देवदूत प्रार्थना का पाठ करेंगे। रविवार 20 जुलाई को सुबह 9:30 बजे संत पापा अल्बानो के महागिरजाघर में पौत्र मिस्सा का अनुष्ठान करेंगे और मध्याह्न 12 बजे कस्टेल गंदोल्फो के आजादी प्रांगण में देवदूत प्रार्थना का पाठ करेंगे। उसके बाद दोपहर में वे वैटिकन लौटेंगे। अवकाश के दौरान जुलाई महीने में सभी निजी मुलाकातें स्थगित रहेंगी। साथ ही 2, 9, 16 और 23 जुलाई को होने वाले आम दर्शन समारोह भी स्थगित रहेंगे। आम दर्शन समारोह बुधवार 30 जुलाई को फिर से शुरू होगी। शुक्रवार 15 अगस्त को सुबह 10 बजे संत पापा कस्टेल गंदोल्फो के परमधम पीठे पल्ली में पौत्र मिस्सा संपन्न करेंगे और 12 बजे आजादी प्रांगण में देवदूत प्रार्थना होगी। रविवार 17 अगस्त को दोपहर 12 बजे कस्टेल गंदोल्फो के आजादी प्रांगण में देवदूत प्रार्थना होगी। उसके बाद दोपहर में संत पापा वैटिकन लौटेंगे। म्यांमार में कैथोलिक नेताओं ने शांति के लिए पोप लियो चौदहवें की नई अपील का स्वागत किया है, क्योंकि हिंसा और विस्थापन संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में समुदायों को तबाह कर रहे हैं, विशेषकर उत्तर मध्य सगांग क्षेत्र में। वैटिकन की फिदेस न्यूज एजेंसी को दिए एक साक्षात्कार में मांडले महाधर्म प्रांत के विकर जनरल फादर पीटर सेन हलैंग ऊ ने कहा, पूरे म्यांमार में ऐसे क्षेत्र हैं जहां अब भी लड़ाई हो रहे हैं, जहां लोग विस्थापित हो रहे हैं, जहां नागरिक संघर्ष से भागते समय बहुत कठिनाई झेल रहे हैं। फादर ने कहा, हमारे मांडले महाधर्म प्रांत में विशेषकर सगांग क्षेत्र संघर्षों, बमबारी और नागरिकों की अत्यधिक पीड़ा से सबसे अधिक प्रभावित है। रविवार 15 जून को देवदूत प्रार्थना के दौरान पोप लियो चौदहवें ने म्यांमार में चल रही हिंसा को याद किया था, जिसकी कलीसिया के अधिकारियों ने प्रशंसा की, जिन्होंने कहा कि उनके संदेश ने संकट के कारण तेजी से अलग थलग महसूस कर रहे समुदायों को प्रोत्साहन प्रदान किया है। फादर पीटर ने कहा, हम उनके शब्दों एवं नागरिकों की पीड़ा पर उनके ध्यान के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने सगाइन में तबाही के दृश्यों पर चर्चा की, जहां गांव छोड़ दिए गए हैं अथवा लगातार बमबारी के कारण मलबे के ढेर बन चुके हैं। संत पेत्रस महागिरजाघर के संरक्षण एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार संस्था ने विश्व पत्र लाउदातो सी से प्रेरित एक पर्यावरण स्थिरता योजना का अनावरण किया है। उत्सर्जन में कमी लाना, वायु गुणवत्ता की निगरानी करना तथा हमारे आम घर की देखभाल करना, ये वे सिद्धांत हैं जिन्हें संरक्षण एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार संस्था फैब्रिक ऑफ सेंट पीटर्स ने अपने पर्यावरण स्थिरता परियोजना का आधार बनाया है। इस पहल का उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े महागिरजाघर को दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत स्थलों के लिए एक मॉडल बनाना है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।